તારીખ 12/1/1998 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 252 મૂળ કેસેટમાં શરૂઆતમાં અવાજ ધીમો છે.
પરમાત્મ સ્વરૂપ કા સાક્ષાત્કાર કિયા હૈ એસે જ્ઞાનીઓને યે છ બાત સમ્યક દર્શન પાને કે લિયે एकदम प्रयोजनभूत समझी है और प्रयोजनभूत होने से कही है. उसमें कल के स्वाध्याय में आत्मा है वो बात कही थी. आत्मा है मैंने मैं हूं. कैसा मैं हूं तो खबर बता सक चैतन्य सत्ता धारण की है. चैतन्य सत्ता वाला हूँ. मेरी मौजूदगी मेरे चैतन्य स्वरूप में है. मेरे चैतन्य स्वरूप को छोड़ करके मेरी मौजूदगी और कहीं जगह नहीं है. ऐसा अनुभव सम्यक दर्शन के कारण में होता है. ऐसा अनुभव समीप दर्शन के काल में होता है कि मैं चैतन्य स्वरूप की स्वतर प्रकाशक आत्मा हूँ. मैं राग स्वरूप भी नहीं. मैं शरीर देहादि स्वरूप भी नहीं. और मेरा अस्तित्व कहीं मकान कुटुंब आदरू कीर्ति कहीं मेरा अस्तित्व नहीं है. वो बात कल विस्तार से चली थी. दूसरा पद है आत्मा नित्य है. ऐसा स्वतर प्रकाशक जो मेरा स्वरूप है वो नित्य है. नित्य है माने अनादि अनंत है. मैं कभी उत्पन्न हुआ न मैं कभी मरने वाला भी हूँ. जो जन्म मरण है तो देह का संयोग को जन्म कहते हैं और देह का वियोग को मृत्यु कहते हैं. न आत्मा नई उत्पन्न होती है न आत्मा की मृत्यु भी होती है. इसी गुण से पहचाना जाता है और इसी गुण से अनुभव किया जाता है. दोनों जो प्रथम स्टेज है वो इसी कारण से होते हैं. दूसरे आत्मा में गुण तो है लेकिन वो प्रकट नहीं है. उसकी विपरीत अवस्था है. जैसे सुख गुण है आत्मा में तो अभी वर्तमान में दुख है परिणमन में सुख नहीं है. वितरागता गुण है आत्मा का लेकिन वर्तमान में राग है वितरागता नहीं है. एक ज्ञान जो स्वपर प्रकाशक है वही खुला है वही स्वभाव रूप है इसलिए यहाँ से पहचाना जाता है. ज्ञान से ही पहचाना जाता है और ज्ञान में ही अनुभव में आता है. इसलिए अनंत गुण संपन्न आत्मा होने पर भी ज्ञान प्रधान गुण वाला है. कैसा है? ज्ञान प्रधान गुण वाला आत्मा है. और शास्त्रों में ज्ञान की प्रधानता से ही आत्मा को समझाया है. समझे भी ज्ञान की प्रधानता से इसलिए समझाया भी ज्ञान की प्रधानता. एक तो स्वभाव खुला है दूसरी ज्ञान की विशिष्टता वो है कि ज्ञान स्वयं को भी जानता है कि मैं ज्ञान हूँ और ज्ञान दूसरों को भी जानता है कि वो कितने समीप है और कितने दूर है. जैसे दूसरे गुण है वो अपने समीप है और रागादि भाव विभाव है शरीर आदि परद्रव्य है वो अपने से दूर है. दूसरे पदार्थ है जड़ पदार्थ है परमाणु के बने हुए हैं. तो जड़ चैतन्य की सत्ता को भिन्न होने में ज्ञान ही साधन है और कोई साधन भी नहीं है। एकमात्र ज्ञान साधन है, साधन है उसमें भी एकमात्र ज्ञान साधन है, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। दूसरा पद में आत्मा नित्य है ऐसा कहा, तो उसको समझाने के लिए ये बात कही कि घटपट आदि पदार्थ अमुक काल वर्ती है। गांधी जी के पत्र में भी यही बात किया है, आत्मा क्या है, तो साथ साथ वो उसकी नित्यपना का भी प्रतिपादन वहां किया है कि घटपट आदि पदार्थ अमुक काल वर्ती है। अमुक काल में कुछ काल में होते हैं, बाद में उसकी अवस्था बदल जाती है, घड़ा फूट जाता है, मिट्टी हो जाता है, मिट्टी में से घड़ा हुआ था, ऐसे रुई में से वस्त्र हुआ था, फिर वो फट जाता है, वो रेख में चला जाता है। तो वो अमुक कालवर्ती है, आत्मा त्रिकालवर्ती है, मूल स्वरूप जो है वो त्रिकाल वैसा का वैसा है। उसको शास्त्र में शुद्ध चैतन्य धातु भी कही है। क्या? शुद्ध चैतन्य धातु। जैसे सोना एक ऐसी धातु है कि हमेशा वो सोना ही रहता है, कोई चांदी से उसकी मिलावट करते हैं, कोई तांबा से करते हैं, फिर भी तांबा चांदी कोई सोना नहीं बनता, पर सोना है वो तो चांदी रूप और तांबा का स्वरूप में नहीं आता।
ऐसे ये जो ज्ञान है ये स्वभाव से नित्य प्रकट है, फिर भी हम पकड़ क्यों नहीं पाते?
क्योंकि हमने और जगह हमारा अपनत्व दृढ़ कर रखा है, ज्ञान को हम भूले हुए हैं, ज्ञान को हम चुके हुए हैं। राग में अपनत्व है, और राग के विषयभूत जितने भी पदार्थ हैं, पंचेंद्रिय के विषय शरीर आदि, उसमें अपनापन कर रखा है। पर में भी अपनापन हुए, वो ज्ञान नहीं किया है, तो ज्ञान में अपना अपने पे अपनापन नहीं रहा। अन्य तत्व में, अनात्म तत्व में आत्मपना, मैं हूं ये मेरा है ऐसा कर रखा है, तो ज्ञान खुद अपने को ही भुला हुआ है। अपने को आप भूल के हैरान हो गए, ये बात हुई है कि अपने को ही भूला है। मैं ज्ञान स्वरूप भी हूं ऐसा कोई नहीं मानता, मैं फलाना फलाना ऐसा शरीर वाला हूं, फलाना फलाना कुटुंब वाला हूँ, फलाने फलाने प्रकार का संयोग वाला हूँ, समाज में मेरा यही स्थान है, कुटुंब में मेरा यही स्थान है, बस ये सब अनेक प्रकार की मान्यता तीव्र रूप से दृढ़ता से कर रखी है। और इसी कारण से वो उसी प्रकार बिहेव करता है, जो माना है ऐसा ही वर्तन करता है, और उसमें सुख दुख का अनेक प्रकार का वो बंध भेद को अनुभव करता है, कभी दुख का कभी सुख का, कभी दुख का कभी सुख का। मैंने कम दुख को सुख कहते हैं, वहां सुख तो है ही नहीं, लेकिन कम दुख को वहां सुख कहते हैं। आत्मा त्रिकालवर्ती है, घटपट आदि संयोग जन्य पदार्थ है, कुछ न कुछ संयोग से वो बने हुए हैं, जबकि आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, किसी संयोग से वो बना नहीं है और न किसी संयोग से बनाया जाता भी है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति के लिए कोई भी संयोग अनुभव योग्य नहीं होते। कोई संयोग से नया आत्मा की उत्पत्ति कर सकते हैं ऐसा बन सकता नहीं है। किसी भी परमाणु में नया जीवत्व पैदा नहीं कर सकते, चाहे हम कंप्यूटर बनाए चाहे हम रोबोट बनाए, लेकिन उसमें जीवत्व पैदा नहीं हो सकता। परमाणु हमेशा जड़ रहता है, उसमें जीवत्व नहीं होता। आत्मा चैतन्य स्वरूप है, वो कभी जड़ नहीं होता। परमाणु भी अनादि अनंत है, वो भी अवस्था बदलता है। आत्मा भी अनादि अनंत है, वो भी अवस्था बदलता है। अवस्था से अवस्थांतर होना, रूप से रूपांतर होना, वो पदार्थ का स्वभाव है। जड़ और चैतन्य दोनों पदार्थ का वो स्वभाव है। ये पदार्थ का विज्ञान है, ये पदार्थ का साइंस है। हमारे जैन दर्शन का उपदेश वस्तु के स्वरूप के विज्ञान के अनुसार है, ऐसा नहीं है। उपदेश में तो ये आएगा कि राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो, संभाव रखो। बात तो अच्छी है, ठीक है, दूसरे लोग भी यही कहते हैं, दूसरे धर्मों में भी। लेकिन इसके पीछे कौन सा विज्ञान है कि सहज ऐसा किया जाए कि तुम चैतन्य हो, तुम आत्मा हो, तेरे सिवा तेरे लिए दूसरे सब अनात्मा है, आत्मा नहीं है, तेरा आत्मा नहीं है। इसके प्रति राग होना वो तेरा दोष है, क्योंकि उसमें कोई तो राग से कोई फायदा तो है नहीं, तेरे से भिन्न है, आत्मा अनात्मा से भिन्न है, इसके प्रति राग करके क्या करेगा तुम, तो दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने में जो सुख शांति आनंद है वो परिणाम अपने में लगाओ तो सुख शांति का अनुभव होगा और वितराग भाव से होगा। इसलिए वस्तु के स्वरूप का विज्ञान है वो वितरागता का और सुख शांति का उत्पादक है। संसार में सभी प्राणी को, सभी जीवों को कुछ भी करके सुख शांति चाहिए, और क्या प्रयोजन है बताइए? सुख शांति के अलावा तो कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन वो सुख शांति मिलती नहीं है, इसका वो कारण है कि जहां सुख शांति मिलने का कोई एक अंश भी पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां से सुख शांति लेने का प्रयास होता है। तो भिन्न पदार्थ है, आत्मा का सुख परमाणु में तो नहीं है, लेकिन दूसरे जीव में भी नहीं है। अपना सुख कहीं अपने स्वरूप को छोड़ करके कहीं है ही नहीं। सुख आत्मा के भीतर में है और वो बाहर खोजता है, और जीव बाहर से लेने का प्रयास करता है तो कभी किसी को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बात पॉसिबल नहीं है।
ऐसे सुख आत्मा के भीतर में है, इनका पक्का प्रतीक हो जा रहा है कि सुख आत्मा के भीतर ही है और जगह नहीं है, इसके लिए थोड़ा
प्रश्न वो है कि सुख आत्मा के भीतर है वो कैसे मालूम पड़े, उसका विश्वास कैसे आए, प्रतीत माने विश्वास कैसे आए। क्यों कि ज्ञानी तो कहते हैं कि सुख आत्मा के भीतर में है, लेकिन जहां तक दिखता नहीं है विश्वास नहीं आता, और बाहर में भले ही सुख नहीं है ऐसा कहते हैं ज्ञानी, परंतु पदार्थ की इच्छा होती है, पदार्थ अगर मिलता है तो इच्छा की आकुलता शांत होकर के सुख का अनुभव होता है। जैसे पानी की प्यास लगी और पानी मिला तो प्यास लगी, उसको तो आकुलता थी, तो आकुलता को शांत करने के लिए पानी पिया जाता है तो आकुलता मिटती है, जिसको हम सुख कहते हैं। इसलिए वहां विश्वास हमारा जमा हुआ है कि जितनी प्रकार की इच्छाएं होती है अगर पदार्थ मिल जाता है तो सुख होता है, नहीं मिलता है तो दुख चालू रहता है, आकुलता चालू रहती है। और आत्मा में सुख है वो दिखता नहीं, इसलिए उसका विश्वास आता नहीं और उसका विश्वास जाता नहीं। ऐसी परिस्थिति में बाहर में सुख नहीं है कहीं भी और आत्मा में सुख है, वो सिद्धांत और वो वस्तु स्थिति है, उसका स्वीकार करना कठिन हो जाता है जीव को। और इसी कारण से संसार में से निकलना, छुपना जीवों को बहुत दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। संसार छोड़ नहीं सकता जीव, बहुत मुश्किल है छोड़ना, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन चुकी है और उसका अनुभव हमको हो रहा है। अब क्या है कि जब बाहर में सुख नहीं है उसका सबूत कोई मिल जाए तब तो ये विश्वास में दरार पड़े क्या, ऐसा विश्वास नहीं टूटेगा। जैसे कोई मजबूत चीज है पहले कमजोर होती है, दरार पड़ती है, फिर टूट जाती है, ऐसे जमा हुआ विश्वास बहुत दृढ़ है हमारा, उसमें दरार पड़ती है तब ये ढीला विश्वास शिथिल हो जाता है, ढीला हो जाता है। वो कैसे पड़ता है कि जहां भी सुख है वो सुख बढ़ता नहीं है, अतृप्त दशा रहती है। जैसे खाने में मिठाई खाने में सुख माना, ज्यादा तो सबसे ज्यादा तो वो चीज का ज्यादा है, खान पीन के इतनी दुकानें लगी है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि खाने के लिए तो जीते हैं, जीने के लिए खाते नहीं, ऐसा नहीं बोलते, खाने के लिए तो जीते हैं ऐसे बोलते हैं। पर तरह तरह की चीज खाने में मिलती है, सुख माना भी है जीवन। अब ज्ञानी कहते हैं कि अगर इसमें सुख है तो तुम खाने को छोड़ो ही मत, खाने की चालू रखो ना। तो बोलेगा कि नहीं, ये तो खाने में भी हमको हाथ जोड़ना पड़ता है कि अभी नहीं खाया जाएगा। अगर कोई मेहमान को ज्यादा खिलाता है कि देखो बहुत बढ़िया चीज बनाई है, आपकी पसंद की बनाई है, तुम ऑर्डर दिया होगा क्या बनाए हैं, तो हमको तो ये भाता है, तो खीर बहुत भाता है, कोई भी एक आइटम को ले लो, हलवा भाता है, कोई भी खिलाते जाओ क्या होगा, हस्बैंड वाइफ बहुत खिलाते हैं क्या होगा, भाई साहब छोड़ो अभी छोड़ दो हमको, फिर भी जबरदस्ती करोगे तो वॉमिट हो जाएगा। इसमें दुख होगा या सुख होगा, क्या होगा, दुख होगा, फिर सुख कहाँ चला गया, फिर सुख कहाँ चला गया। अगर सुख होता तो सुख बढ़ता जाता, जितना खाया उसमें सुख हुआ, डबल खाते तो डबल सुख होता, और 10 गुना खाते तो 10 गुना और 100 गुना खाते तो 100 गुना, लेकिन बात तो उल्टी होगी, डबल तो नहीं हुआ बात उल्टी होगी। तो ये इसका सबूत है कि वहां सुख था ही नहीं, एक हमारी कल्पना थी, एक मिसकॉन्सेप्ट है जिसे हम सुख मान लेते हैं, वास्तव में वहां सुख है। ऐसे सुख का जो अनुभव है वहां दुख का अनुभव होता है, इससे पता चलता है कि वहां सुख नहीं है, क्योंकि वो तो सुख दुख तो अनुभव की चीज है, अनुभव बिना समझा नहीं जाता सुख दुख को। अब कहते हैं ज्ञानी कि देख तेरे आत्मा में सुख है तो तुमको कैसे इसका सबूत दे, क्योंकि इसके बिना तो मानेगा नहीं, मानने वाला भी नहीं है जी,
पक्का बनिया,
हाँ पक्का बनिया है, देखे तो मानेगा, बिना देखे मानने वाला नहीं है, बातों से समझने वाला मानने वाला नहीं है, देख तेरा ज्ञान। ज्ञान में निराकुलता है, ज्ञान निराकुल स्वभावी है, इसलिए ज्ञान का रूप सुख है। क्या है? जैसे किसी मनुष्य का कुछ न कुछ रूप होता है और इससे वो पहचाना जाता है। मनुष्य तो मनुष्य है, सबों को दो आंख है, दो कान है, दो हाथ है, दो पैर है, हाँ? मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन इसके रूप से वो पहचाना जाता है। वैसे ज्ञान सुख से पहचाना जाता है, ज्ञान का रूप सुख है, इसलिए ज्ञान बहुत सुंदर है। तो हमने कभी ज्ञान को इसके रूप से देखने का दृष्टिकोण को अप्लाई नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे समीप में जो चीजें होती है उनको हम सही दृष्टि से नहीं देखते तो हमारी समझ में वो बात नहीं आती। जैसे हमारे मकान में या घर में कोई पौधा होता है और वो कैंसर की वनस्पति भी हो सकती है कि जिससे कैंसर मिल जाए, लेकिन हमको पता नहीं है, तो हमारा अज्ञान से हम उसको उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। इसमें ला करके रखा है, हमको मालूम नहीं है कि ये औषधि है कि नहीं है। औषधि ऐसी कि कैंसर भी मिट सकता है तो इसका मूल्य कितना बड़ा है, हाँ? इसका मूल्य इतना बड़ा है कि जिसका अगर सीक्रेट रखा जाए और इसकी उसी वो जड़ी बूटी का रेवेन्यू निकाला जाए तो अरबों के अरबों रुपए मिल सकते हैं। कितने? लेकिन ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है, ज्ञान का अभाव है तो उसका कोई कीमत हमको नहीं आती है, देखते भी नहीं। ऐसे ज्ञान हमारे समीप है, हम खुद ही ज्ञान स्वरूप ही है और निराकुल स्वरूप है, वो सुख स्वरूप ही है। आकुलता दुख का स्वरूप है और निराकुलता सुख का स्वरूप है, लेकिन वो ज्ञान अकेला ज्ञान मात्र ज्ञान भिन्न ज्ञान की बात है। जो ज्ञान राग से जुड़ा हुआ है, जो ज्ञान द्वेष और मोह से जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ मैंने तल्लीन है, लीन है, एकाकार है, उसमें वो सुख का अनुभव नहीं होता। क्योंकि हम ज्ञान को तो चुक जाते हैं, ज्ञान को चुके हुए हैं और राग को द्वेष को मोह को दुख भावों को एकाकार रूप से अनुभव करने लगे हैं और करते रहेंगे, करते ही रहे। अब भिन्न ज्ञान अकेला ज्ञान उसको देखा जाए तो उसमें निराकुलता रूप सुख है। हर कीमती चीज ऐसी अकेली देखने में या पाने में नहीं आती। सोना भी मिट्टी के साथ खान में रहता है, हीरा भी कोयला के साथ खान में रहता है। जो इसके तजग्ने होते हैं तो स्वर्ण पत्थर को, सोने को पत्थर, सोने का पत्थर बोला जाता है, उसको देखते हैं कि अरे इसमें तो सोने के पार्टिकल्स बहुत हैं, मिट्टी के तो है लेकिन सोने के भी बहुत हैं। अगर उसका प्रोसेस किया जाए तो इस खाने में से इतने हजार टन सोना मिल सकता है, क्या कैलकुलेशन कर सकता है? लेकिन इतने हजार टन सोना वहां कोई लट्ठा के रूप में, लकड़ी के रूप में नहीं पड़ा है, वो बिखरे हुए परमाणु मिट्टी के साथ है। वैसे हमारा ज्ञान और सुख राग द्वेष मोह के खानी में पड़ा है, वहां से हमको उठाना है, कुछ प्रोसेस करना है और सुख की प्राप्ति करनी है। ये परिस्थिति में जैसे उसके तजग्ने है, वो बात समझ करके उसका प्रोसेस करके अकेले सोने को प्राप्त करता है, ऐसे यहां भी कुछ प्रोसेस करना होता है। लेकिन पहले देख लेना पड़ता है कि वहां चीज है कि नहीं है, तब इसका विश्वास आएगा, देखने से ही विश्वास आएगा। तो अकेला ज्ञान भिन्न ज्ञान को लक्ष्मी लेने का उद्देश्य को धारण करके कैसे देखेंगे? उद्देश्य को धारण करके उसका दृष्टांत दिया है शास्त्र में कि जैसे हम दाल है सब्जी है, हमारे यहाँ 100-200 आदमी जिमने वाले हो बनाते हैं, बनाने वाला तो रसोई आता है कुक बनाता है लेकिन चख लेते हैं, जब चखते हैं वो भी उसके एक्सपर्ट है वही चखते हैं, सबको सिखा चखने के लिए नहीं देते कि देखो भी आप जरा देख लो आपको मालूम पड़ जाएगा उसमें नमक तो ठीक है कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया कहीं कम तो नहीं रह गया और रनक तो घुल मिल गया है कोई अलग तो दिखने में नहीं आता पर दिखने की चीज भी नहीं हो तो चखने की चीज है। थोड़ा सैंपल एक चम्मच में लेकर के चखता है तो उस वक्त क्या करता है ज्ञान कि उद्देश्य को धारण करता है, एक खारापन कितना है, दूसरे भी स्वाद है वहां, मिर्च भी डाला है, खटाई भी डाली है, गुड़ भी डाला है और ऐसे ऐसे तो कई मसाले डाले हैं लेकिन हम मीठा को पकड़ सकते हैं, नमक को पकड़ सकते हैं। अब फिर दूसरा चम्मच लिया क्योंकि मिर्च तो ज्यादा नहीं है या बराबर है क्या नहीं है, जो जो स्वाद को हम देखना चाहते हैं वहां दूसरे स्वाद स्वाद होते हुए भी दूसरे स्वाद को ज्ञान में साइड ट्रैक पर ले जाते हैं। जीभ तो चखे बिना रहती नहीं लेकिन ज्ञान में ये हम कर सकते हैं कि दूसरे को हमको नहीं चखना है, खारापन को ही चखना है, अभी तीखापन को ही चखना है, अभी खट्टापन को ही चखना है, तो वहां ज्ञान उद्देश्य को धारण करता है। तो दूसरी चीज को हटा करके एक चीज को पकड़ सकता है ज्ञान, ऐसी शक्ति है ज्ञान में। वैसे हमारे परिणमन में राग द्वेष मोह अनेक प्रकार के विभाव और विकारी परिणाम भी है और ज्ञान भी है। हम अकेले ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उद्देश्य को धारण करें हमारे ज्ञान में तो ज्ञान अपने आप को ग्रहण करता है, ज्ञान ज्ञान को ग्रहण करता है, किसको ग्रहण करता है? वो तो दूसरे रागादि को ग्रहण करना, दूसरे स्वाद को ग्रहण करना वो तो अन्य पदार्थ है, दूरवर्ती है, मैंने ज्ञान से अलग है। अब तो ज्ञान खुद ही ज्ञान को देखता है और चाहे तो देख सकता है, तो उसके लिए उद्देश्य को धारण करने के लिए उस वक्त दूसरा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमको, है ना? जैसे हम चखते हैं तो उस वक्त बातें नहीं करेंगे, ये देखो जरा ध्यान से देखना है, लक्ष्य उपयोग को देना पड़ता है। जैसे यहां भी दूसरे डिस्टर्बेंस से थोड़ा हट करके हमें हमारे ज्ञान को देखना होगा कि इसका रूप क्या है, ज्ञान निराकुल सुख रूप मालूम पड़ेगा, अवश्य मालूम पड़ेगा। पर जब ये मालूम पड़ेगा तब सुख का सैंपल दिखेगा और उस सैंपल के दौरान सुख की खानी भी दिखेगी, जैसे सोने के पत्थर में पार्टिकल्स के दौरान पूरी खानी दिखी कि नहीं दिखी, देखने वाले को पत्थर को नहीं देखा है, देखने वालों ने पूरी खान को देखी है, ये तो इतनी बड़ी खान है कि सैकड़ों साल तक तो उसमें से सोना निकालते ही रहो, ऐसी सुख की इतनी बड़ी खान है कि अनंत काल तक सुख भोगते ही रहो, जैसे हमारे अर्जुन और सिद्ध परमात्मा शादी अनंत काल भोग रहे हैं परमानंद को, ऐसी खाने दिखने में आ सकती है इधर, पर हमारा जो प्रयोजन है वो सुख का है। हमारा क्या, सभी प्राणी का, संसार के सभी जीवों का ये प्रयोजन होने से इस तत्व ज्ञान को वो स्वीकार करता है। कोई भी जीव किसी भी धर्म में वो हो, किसी भी संप्रदाय में मनुष्य ने जन्म लिया हो, इस तत्व ज्ञान का स्वीकार वो करेगा। अगर उनको सही सुख की प्राप्ति करनी है तो, और इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक दृष्टांत है हमारे गौतम स्वामी, जो महावीर भगवान के गणधर थे, वो कोई जैन धर्म जैन कुल में जन्म नहीं लिया था, वो ब्राह्मण थे, वेदांति थे और उनके संप्रदाय के बड़े गुरु थे। फिर भी जब उनको ये समझ में आया कि अनंत सुख के खाने यहां से प्राप्त हो है, तो भगवान के शिष्य हो गए थे। तो क्या कहते हैं कि आत्मा जो है तो स्वाभाविक पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति के लिए कोई भी संयोग अनुभव योग्य नहीं है। किसी भी संयोगी द्रव्य से चेतन सत्ता प्रकट होने योग्य नहीं है। कोई भी मिश्रण करो, किसी भी परमाणु का कैसा भी मिश्रण करो, अवस्था से अवस्था चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए अनुत्तम है। असंयोगी होने से अभिवाक्ति है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति किसी संयोग से नहीं होती उसका किसी में लव भी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है निर्भय होने के लिए। इस संसार में कोई कितना भी सुखी हो ऐसा माना जाए तो भी सुखी इसलिए नहीं है कि भय का पथार के नीचे वो जीता है, भय की तलवार उसको डराती है हमेशा हमेशा, और अनेक प्रकार के भय है। एक प्रकार का भय नहीं है, अनेक प्रकार का भय है। खुद के आयुष्य का भी उसको भरोसा नहीं है, रोज लोगों को अचौकस रूप से मरने को देखने में आता है, ऐसा नहीं है कि बीमारी आते हैं वही मरते हैं, ऐसी तो कोई बात है, बिना बीमार भी मरते हैं और कोई भी आयु में मरते हैं, कोई माँ के पेट में आके मरते हैं, कोई जन्म लेते ही मरते हैं, कोई कोई कुछ घंटे में, कोई कुछ दिनों में, कोई बचपन में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, कोई कभी नहीं मर सकता है। जब ये बात प्रत्यक्ष है तो खुद को भी खुद का भरोसा नहीं आता, मृत्यु का भय हमेशा सताएगा, जीव को मृत्यु का भय हमेशा सताएगा। दूसरा भय रहा संयोग का, ये संयोग हमेशा रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे सब कुछ प्रिय है, मेरा परिवार भी प्रिय हो, मेरा मकान भी प्रिय हो, मेरा गांव भी मुझे प्रिय है, हमको कलकत्ता छोड़ना पसंद नहीं है, क्यों पसंद है, यहाँ सब कुछ मिलता है हमको, अरे हम एरिया बदलना नहीं चाहते, जहाँ रहते हैं बड़े बाजार में रहेंगे तो भवानीपुर में नहीं आएंगे और भवानीपुर वाले कभी बड़े बाजार में जाएंगे नहीं। इतना हमारा लगाव है संयोग से, फिर भी वो संयोग हमेशा रहने वाले टिकने वाले है ही नहीं। वो बात बदलते संयोग से देखने में आती है, आज का करोड़पति है वो कल का रोड़पति देखने में आता है, ऐसा बन जाता है, एक्सीडेंटली बनता है। चला के देना पड़ता है। 2 रुपये का कर्ज हो गया और 1.25 रुपये में निपटता है तो वो राजी होकर के देता है कि नहीं? है? 2 करोड़ का कर्ज हो गया, शेयर बाजार बैठ गया और हमारे पास 1.25 करोड़ है, क्या करेंगे? पूरा पूरा ले लो, लेकिन सब डील कर दो, अकाउंट डील कर दो। कमाई हुई 15 करोड़ की और हो गई 60। 1.5 करोड़ देने से 2 करोड़ का हिसाब किताब छुपते हुआ तो 15 करोड़ हो गया ना, और हो गए हिसाब, मन गए रोड पर। जब ये सब बात नजर के सामने दिखने में आती है तो इसका भी भय रहेगा, और भूकंप होता है, मुंबई में भूकंप हुआ, महाराष्ट्र में लोग घर से बाहर निकलने लगे, रोड पर आ गए, बड़े बड़े मकान, क्या हो जाएगा क्या मालूम, मिलता है सब, एक्सीडेंट का रोड पर आता है तो एक्सीडेंट का भय है, फुटपाथ पर भी गाड़ी चला देते हैं, पी के चलाते हैं, ट्रक फुटपाथ पर ले जाते हैं, किसका क्या भरोसा। सोए तंदुरुस्त अवस्था में, उठे तो गांठ निकली है गले में, डाउट हो गया कैंसर का, बायोप्सी तो बाद में होगी लेकिन भय तो पहले ही हो जाएगा। अरे रात को तो कुछ था ही नहीं हमको, क्या रात को कुछ नहीं था, तो सुबह सुबह क्या हो गया नींद में। ये सब प्रकार की जो आपत्ति है इसके नीचे कहलाने वाला सुखी जीव दुखी होकर के जीता है, कहलाने वाला सुखी, वास्तव में सुखी कोई संसार में नहीं है, एक भी जीव नहीं है, किसी को भी पूछो। और वेस्टर्न कंट्रीज की बात तो खुली है, स्टैटिस्टिक्स वहां मैडनेस का, हार्ट डिजीज का, कैंसर का स्टैटिस्टिक्स देख लो। जो लोग संपन्न है, पैसे वाले जो लोग हैं वहां उन देशों की वही हालत है। इसलिए ज्ञानियों ने हमेशा नित्य सुखी होने के लिए ये बात निष्कारण करुणता करुणा से कही है कि तुम नित्य हो, अगर वो बात का स्वीकार आ जाए तो तुमको मृत्यु का भय चला जाएगा। सबसे पहले कौन सा भय जाएगा? मृत्यु का भय चला जाएगा, क्योंकि तुम मरने वाले नहीं। सम्यक दर्शन अपनी नित्य आत्म स्वरूप का अनुभव करता है, क्या करता है? हम नित्य है ऐसा अनुभव करने वाला सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ये 2 टैबलेट खाली सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की तो हो गया खुद अजर अमर, मेरी मृत्यु नहीं है। अगर मृत्यु का भय नहीं है तो और कोई भय है ही नहीं, सब भय एक में समाविष्ट है, एक मृत्यु के भय में, इससे बड़ा कोई भय है ही नहीं। मृत्यु को जिसका भय नहीं है उसको कोई भय रहने वाला, यहां से सुख चालू हो जाता है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं वो तो वहां से सुखी, अपना सुख को अनुभव करने करके सुखी हो जाते हैं वहां से ही, और उसका सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अरिहंत अवस्था में परमानंद और परम सुख का वो भोक्ता हो जाता है, यहां से सुख चालू होता है सम्यक दर्शन से, क्योंकि अपनी नित्यता का अनुभव हो गया।
अब हम
अमर भाई न मरेंगे। या कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे? हमने मिथ्यात को त्याग कर दिया, अभी तो हमारा जन्म मरण होने वाला नहीं है, मृत्यु आएगा तो इसका भय नहीं, और आगे जाकर के जन्म भी नहीं और मरण भी नहीं, क्यों कर दिए धरेंगे। आनंद जी ने गाया, ये बात बनने वाली है। तो नित्यता का अनुभव कैसे किया जाए, हम इसके प्रयोग की थोड़ी चर्चा करेंगे कि नित्यता का अनुभव। अरे अपने नहीं आए, अश्विन भाई नहीं आए, छह पद का पत्र तो उन्होंने लिए देने के लिए बोला था ना है? तो बात तो क्या है, विशिष्ट बात, बात सबने पढ़ी है, हमारे लोगों ने ग्रंथ तो सबके अपने घर में है, सबने पढ़ी भी है और सोची समझी भी है, कोई नई बात नहीं है। बात थोड़ी नहीं है, वो प्रयोग की है, पढ़ी है, समझी है, समझदारी है हम लोगों में, लेकिन प्रयोग नहीं किया। प्रयोग करने से वो अनुभव में आता है, तो उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसलिए वो बात थोड़ी नहीं है, इसलिए याद किया। बात तो समझी होगी लेकिन थोड़ा प्रयोग कैसे करोगे। देखो, हमारा ज्ञान हमेशा कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता है, नित्यता भी ज्ञान से समझ में आएगी, सुख भी ज्ञान से समझ में आएगा, नित्यता भी ज्ञान से समझ। ज्ञान निरंतर चालू ही चालू रहता है, उसको चालू रखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है क्या? चलो ज्ञान को चालू करें,
स्विच ऑन है, स्विच ऑफ एंड ऑन करना नहीं जरूरी।
ज्ञान हमेशा चालू तो रहता है, अरे उसको बंद नहीं कर सकते, कर दो बंद अपने ज्ञान को, एक सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, एक सेकंड के लिए ज्ञान को बंद करना चाहे तो कोई बंद नहीं कर सकता। उस समय शर्मा नित्य उदित स्वरूप है, छठी गाथा में आया है, सात के स्वाध्याय में, समय सार में। ऐसा जो ज्ञान निरंतर रहता है, हमेशा चालू रहता है, उस ज्ञान की नित्यता को देखते ही त्रिकाल नित्य हो ऐसा विश्वास आता है कि इसको कोई समाप्त कर ही नहीं सकता। मैं खुद ही मेरे ज्ञान को मिटा नहीं सकता, तो जो जिसकी जहां पहुंच नहीं है, कौन मेरे ज्ञान को मिटाएगा? मैं खुद ही मिटाना चाहूं तो मेरे ज्ञान को एक सेकंड के लिए मिटा नहीं सकता, पर दूसरे किसी पदार्थ की तो मेरे ज्ञान में पहुंच नहीं है। कोई ऐसा आपको ऑर्डर कर सकता है या फोर्स कर सकता है कि आप फलाने विचार मत करो, किसी के पहुंच नहीं है। अपने ज्ञान में किसी की पहुंच नहीं है कि उसमें कोई हेरफेर करे, कोई उसको बंद कर दे, कोई अटका दे, कोई कुछ कर दे, डिस्टर्ब कर दे, कुछ नहीं है। अब देखो थोड़ा एक और विचित्र बात को दृष्टांत लेते हैं। गैया सुनते हैं, सुनते हैं ना, अभी सब लोग सुनते हैं, इसमें कोई आवाज करते हैं घर में दूसरे लोग, तो हम कहते हैं कि आवाज बंद करो, डिस्टर्ब होता है हमको। क्या कहेंगे? ये आवाज बंद कर दो, मुझे सुना सुनने में डिस्टर्ब होता है। तो ये जो दूसरे का आवाज है, उसने हमारे ज्ञान में डिस्टर्ब किया कि नहीं किया, मेरा प्रश्न है। तो आपको ये बात समझ में आई कि कोई ज्ञान को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ज्ञान में किसी की पहुंच नहीं है, तो ये घटना में ज्ञान डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? विजय भाई बोलो,
नहीं हुआ।
नहीं हुआ। क्यों, कैसे नहीं हुआ? क्या आप अगर फिर भी सुनने में ध्यान देंगे तो ये आवाज नहीं सुना देगा। आपका उपयोग गया है तो अपना आपका ज्ञान ने डिस्टर्बेंस पैदा किया है सुनने में। फिर से, आपका उपयोग सुनने में था तो आपका उपयोग वहां गया इसलिए ज्ञान में ही ज्ञान का डिस्टर्बेंस हुआ है, वो आवाज का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, वास्तविकता वो है। अगर हम उसको निग्लेक्ट करें, जैसे फैक्ट्री के पास हम रहते हैं तो 24 घंटा फैक्ट्री का आवाज आएगा, रोड के पास भी उतरते हैं तो ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस है क्या नहीं है, ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन का डिस्टर्बेंस है क्या नहीं है, आवाज का खटाट खटखट 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 हो गया करता है, लेकिन हम निग्लेक्ट करते हैं तो कुछ समझ में सो जाते हैं आराम से। घर में तो थोड़ा भी आवाज करो तो सोएंगे नहीं, तो सोना है आवाज मत करो, और ट्रेन में जोर जोर से आवाज आती है और हम सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, लेटे लेटे तो सो ही जाए, बैठे बैठे सो जाते हैं। क्यों? कि हमारा उपयोग मिट गया तो बात खत्म। तो ज्ञान ही ज्ञान में डिस्टर्ब करता है, कोई दूसरा ज्ञान को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो भी ज्ञान में हुआ है, लेकिन मिसकॉन्सेप्ट वो है कि आवाज ने डिस्टर्ब किया, वो मिसकॉन्सेप्ट है। दोष हमारा है, हमारा ज्ञान उधर जाता है तो डिस्टर्ब होता है, दोष हमारा है। और हम आरोप क्या करते हैं, आप लोग बंद करो आवाज को, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, बात गलत है। हम उसको गौण करके ध्यान से सुनने लगे, चलो ये कोई ऐसी आवाज है कि बंद हो ही नहीं सकते, हम ध्यान से सुने, एकाग्रता से सुने, सुन सकते हैं बराबर। तो इस तरह से ज्ञान चालू रहता है, उसकी ज्ञान की सातत्यता जो है, सततपना सातत्यता है, उसका अनुभव करने से हम अनादि अनंत नित्य है इसका विश्वास आता है, इसकी प्रतीत आती है। भाव भाषण के काल में इस तरह से अपने स्वरूप की नित्यता का भाव भाषण होता है, स्वरूप की पहचान करने के काल में, पहचानने के काल में सुख की पहचान होती है और दूसरी नित्यता की, और तीसरी शुद्धत्व की। शुद्धत्व मैंने क्या है, राग द्वेष मोह बहुत हुआ, निरोध में गए, प्रचुर कसाई कलंक हुआ, ज्ञान ज्ञान शुद्ध ज्ञान शुद्ध ही रहा है, ज्ञान में कोई मिलावट नहीं हुई है। ज्ञान को मिलावट कोई कर ही नहीं सकते ज्ञान में, ऐसी एक शुद्ध चैतन्य धातु हमेशा शुद्ध ही रहती है, सोने की तरह, मिट्टी के साथ भी सोना तो सोना ही रहता है। उस तरह से अपनी नित्यता का अंतर अवलोकन से सात्य को देखने का अवलोकन होगा, तो उस प्रयोग से हमारी नित्यता का विश्वास, हमारी नित्यता की प्रतीत हमको आ सकती है। तो नित्यता की प्रतीत आने से मृत्यु आदि सब भय चले जाते हैं, और नित्यता की प्रतीत के साथ अगर हम नित्य रहते हैं, हमारी नित्यता में कोई बाधा नहीं डाल सकते, तो हमारा जो अव्याबाधत्व है उसका भी विश्वास आता है कि हमको कोई बाधा नहीं कर सकते, कोई बाधा पहुंचा नहीं सकते, तो मैं शाश्वत हूं, नित्य हूं, अव्याबाध सुख स्वरूप हूं और अनंत सुख का निधान हूं, हानि हूं, इतनी प्रतीत आ गई, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक स्वरूप का ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीत को ही सम्यक प्रतीति, आत्मा की प्रतीति कहते हैं, और ऐसे ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, और वो हमेशा सुखदायक है, दुख का नाश करने वाला है। दुख मिसकॉन्सेप्ट से, हमारी उल्टी समझ से उत्पन्न हुआ है, वरना दुख उत्पन्न हो ही नहीं सकता। स्वाध्याय के दौरान सत्संग के माध्यम से हमको हमारी समझ को ठीक करनी है, हमारा दुख मिटाने के लिए और सुखी होने के लिए, बस उतनी सी बात है। तो अगर हम जो सुखी हुए हैं, इसलिए कहा कि जो शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने ये छह पद कहा है। क्या हेडिंग में लिया है? ज्ञानी पुरुष कैसे हैं कि जिसने ये छह पद का अनुभव किया है, छह पद से अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया है और सुखी हुए हैं, तो निष्कारण करुणा से बतलाते हैं। इसलिए वो निष्कारण करुणा से बतलाते हैं कि उसको बतलाने वाला भी कोई निष्कारण करुणा से महात्मा थे, कोई सत्पुरुष ने उसको समझाया सही समझ से, वो भी ज्ञानी हुआ। हमको पता चला अरे मैं भी बहुत दुख भोगा इस संसार में, चार गति में परिभ्रमण किया, कभी जीव जंतु प्राणी सब प्रकार के हुए, फिर अभी मनुष्य हुआ हूं। तो मेरे को समझ में आया मेरा का दुख टल गया। तो अगर ये बात मैं खुली करता हूं तो दूसरों का भी टल सकता है, मेरे को कुछ देने का तो है ही नहीं। लोग उसको ज्ञान दान कहते हैं, लेकिन दिया क्या? दिया तो नहीं। और वो ऐसा एक बात है जिसको ज्ञान दान बोला जाता है, देने से तो कुछ कम होता है लेकिन ये देने से बढ़ता है। चमत्कारिक बात है। क्या है? देने से चीज कम होती है, ये देने से बढ़ती है। नित नित बड़े सवाल है। राम रतन वो है ज्ञान की प्राप्ति से, आत्मा राम है वो रतन है, ज्ञान की खानी आनंद, ज्ञान की खानी आनंद, सुख की खाने। तो मेरा गायन राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो तो नित नित बढ़ता है, हमेशा सवाया होता है और पूर्ण केवल ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण परमानंद की दिशा हो जाएगी। तो आध्यात्मिक पद है, खर्चे खुटे नहीं ऐसे ऐसे ज्ञान खर्चने से खुटता नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं ज्ञानी। तो ज्ञान खर्च करने से खुटता नहीं, वो तो बढ़ता जाता है। और ये इसके बढ़ने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो इस तरह से वो बांटते रहते हैं।
वो तो भाई बोलते हैं जन्म जन्म की पूंजी भाई, तो इतनी पूंजी हो गई जन्म जन्म के
चलते। हाँ, तो वो खुटते नहीं। जीव साथ में लेके जाता है इस संस्कार को, यहाँ आयुष पूरा होता है तो जो भी उसको ज्ञान मिला वो साथ में जाएगा, संस्कार तो साथ में आता ही उल्टा है तो उल्टा संस्कार साथ में आता है। हमारे यहाँ दो जुड़वा बालक पैदा होता है, एक गर्म होता है एक नरम होता है, क्या नहीं है? ये चींटियां कीड़ी काली होती है काटती नहीं है, लाल होती है वो काटती है। क्यों? गुस्से से वो उसका शरीर बदन भी लाल हो गया, रोग प्रकृति से उसका बदन भी लाल है, वो काटेगी। वो संस्कार है, पूर्व संस्कार है। सर्प काटता है उसको क्रोध आता है, किसी को भी काट लेता है, कोई दुश्मन नहीं है इसका, लेकिन उनका क्रोध इसके सिवा मिटता नहीं। झगड़ा करने वाले को झगड़ा करने वाला मिले तभी उसको शांति होती है, प्रकृति क्रोध की होती है ना, उसको भी ऐसा ही है। कोई काटता है तो उसका क्रोध मिटता है, तो क्रोध मिटाने के लिए काटता है, दूसरे का जान जाता है। देखो क्या फायदा। ऐसा ही दोष में दूषण में खुद को भी नुकसान है, दूसरे को भी नुकसान है, नुकसान है। निर्दोषता में खुद को भी सुख है और दूसरे को भी सुख का निमित्त बनता है। इस तरह से ये जो नित्यता है ये अनुभव करने योग्य है, और अनुभव करने से जीव हमेशा हमेशा सभी प्रकार के भय से और भय के दुख से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि संसार में भय को मिटाने का कोई औषध, कोई दवाई, कोई इलाज, कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये वितराग का तत्व ज्ञान। इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये दूसरा पद की यहाँ समाप्ति होती है। तीसरा पद का स्वाध्याय कल करेंगे। यहाँ तक।